मेरे अजीज़ दोस्तों नमस्कार। आज 21 अक्टूबर 2020 है और आज के इस AFEIS की लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं और अभी हम लोगों का विषय है पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच जो संवाद की स्थिति रहती है, जो संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उनको कैसे सरल सहज बनाया जाए और कैसे उस तनाव को ढीला किया जाए। कल मेरे पास बहुत से ऐसे मेल आए हैं और सच पूछे तो उन मेल्स की संख्या देख करके मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हो गया और थोड़ा सा रोमांचित भी। आश्चर्यचकित इस बात को लेकर था कि इतने सारे मेल एक ही समस्या को लेकर आए हुए हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबकी समस्या लगभग लगभग एक जैसी है, तो आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। रोमांचित मैं इस बात को लेकर हुआ कि जो मेल मेरे पास आए हैं, वो डेफिनेटली मेरे पास जो मेल आते हैं वो नौजवान साथियों के ही होते हैं, उनमें से सभी ने इस बात के प्रति अपनी बहुत गहरी इच्छा, जिसे मैं उत्कट इच्छा, व्यक्त की थी कि सर हम अपने पेरेंट्स के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम क्या करें, कैसे करें, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। और उसी में कुछ मेल इसको लेकर के भी थे कि सर हमने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन पेरेंट्स की तरफ से हमें थोड़ी भी गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, वो बहुत कठोर हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, इस तरह की बातें भी थी। आप लोगों को ध्यान होगा कि कल मैंने एक बात आप लोगों से बताई थी कि पेरेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है ईगो को लेकर के होती है, हालांकि ये बच्चों के साथ भी होती है लेकिन ज्यादा समस्या पेरेंट्स के साथ होती है, और बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो भय को लेकर के होती है, वो अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं भयभीत रहते हैं और इन दोनों कारणों से वो संवाद की स्थिति नहीं बन पाती है। तो दोस्तों, कल जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो ये कि अब ऐसे में क्या किया जाए कि पेरेंट्स झुकने को तैयार ही नहीं है जबकि जो बच्चे हैं इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एक ही उपाय मुझे सूझा और वो ये कि मैं पेरेंट्स से एक अपील करूं, जिसे आप एक मार्मिक अपील भी कह सकते हैं लेकिन साथ ही साथ एक व्यावहारिक अपील भी। फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट को कितने पेरेंट्स सुनते हैं, लेकिन मेरे पास जो थोड़ी सी खबरें हैं वो ये हैं कि बहुत से घरों में सभी लोग इसे सुनते हैं, सामूहिक रूप से सुनते हैं, जो मेरे लिए बहुत ही आत्मसंतोष की बात है। तो मैं इस उम्मीद से आज के इस विषय की शुरुआत कर रहा हूं कि कम से कम कुछ पेरेंट्स तो सुनेंगे ही, भले उनके साथ ये समस्या न हो, और ईश्वर करे कि उनके साथ ये समस्या न हो, और यदि वो सुन लेंगे तो हो सकता है कि मेरी यह अपील उनके माध्यम से दूसरों तक भी पहुंच जाए, या यह भी हो सकता है कि जिनके साथ ये समस्या है, यानी कि जिन युवाओं के साथ ये समस्या है, वे अपने पेरेंट्स को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसे सुनाने की कोशिश करें तो इसके कुछ शब्द हो सकता है कि उनके कानों में पड़ें और तब फिर हृदय तक पहुंच करके कोई परिवर्तन की स्थिति ला दे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक आशा के साथ मैं अपनी कुछ बातें पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों, जब मैं अपनी बात पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूं तो मैं दोनों भूमिकाओं में हूं। एक लेखक होने के नाते यूं कह लीजिए कि मुझ में थोड़ी सी यह क्षमता है कि मैं पेरेंट्स के दिमाग में भी घुस सकता हूं और साथ ही साथ मैं बकायदे जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में भी घुस सकता हूं। वैसा हालांकि हर कोई कर सकता है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो कभी ना कभी खुद बच्चे भी थे। अगर वो उन दिनों को याद कर लें, अपने समय को याद कर लें, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा व्यावहारिक स्तर पर पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, एक दो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा। हमें इस बात को, हमें अगर मैं कह रहा हूं तो पेरेंट्स के रूप में आप समझ लीजिए क्योंकि मैं भी पेरेंट्स ही हूं, हमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए, जो एक कटु सत्य भी है, कि हमारा वक्त समाप्त हो चुका है। हमें अपना जो जीवन जीना चाहिए था, जो सार्थक जीवन होता है, जो सक्रिय जीवन होता है, वो लगभग लगभग जी लिया है। हमने जैसा भी जिया, अपनी स्थितियों के अनुकूल जिया, अपनी इच्छाओं के अनुसार जिया, जो भी हमारी स्थितियां थी उसमें अपनी इच्छाओं का तालमेल बैठाकर जिया। कुल मिलाकर यह कि जो हमारा अतीत है वो लंबा हो चुका है और हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही छोटा सा बचा हुआ है। और सच पूछिए तो हमारा यह जो भविष्य है यह भी अब कुछ ऐसा नहीं है कि जिस पर हमारा बहुत ज्यादा नियंत्रण हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, जबकि ठीक इसके विपरीत जो हमारे अपने बच्चे हैं उनका अतीत बहुत छोटा है और उनका भविष्य बहुत लंबा है। जिनका भविष्य लंबा है स्वाभाविक तौर पर निर्णय उन्हीं के हित में लिए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी लंबा जीवन जीना है। पहली बात तो फ्रेंड्स यह। दूसरी बात यह है कि हम जिनके भविष्य के लंबेपन की बात कर रहे हैं वो इनफैक्ट सच यह है कि कहीं ना कहीं वो हमारे अपने ही भविष्य का विस्तार है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे, उस दिन के बाद अगर हमारे भविष्य को कोई आगे बढ़ाएगा तो वो हमारे अपने बच्चे ही होंगे। वो चाहे जिस रूप में भी आगे बढ़ाएं, वह उनकी अपनी सोच है, अपने कार्य हैं, लेकिन बढ़ाने वाले अगर कोई हो सकते हैं तो वो सिर्फ हमारे अपने बच्चे हो सकते हैं। और जब मैं कह रहा हूं हमारे अपने बच्चे हो सकते हैं तो वो हमारा अपना ही विस्तार है। फ्रेंड्स, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय नैतिक दोहे बहुत चलते थे, रहीमन के दोहे, रसखान के दोहे, तुलसीदास के दोहे। उसमें नैतिक जीवन के संबंध में ढेर सारी बातें होती थी। हम लोग जिस एज में, जिस युग में ये सब हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की है, उसमें एक बहुत ही प्यारा सा दोहा हम लोगों ने पढ़ा है और मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उन सब ने भी यह पढ़ा होगा। उस दोहे का कुछ अर्थ इस तरीके से था कि जो बड़े लोग हैं उन्हें हमेशा क्षमावान होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। जो छोटे होते हैं, यहां छोटे का मतलब छोटे लोग से मतलब नहीं है, जो हमारे अपने बच्चे हैं वो तो उत्पात करेंगे ही, यानी कि यह स्वभाव ही है कि बड़े को क्षमावान होना चाहिए, यह उनका क्षमा का स्वभाव ही होता है। और जो छोटे हैं वो गलतियां करेंगे, उत्पात का मतलब है गलतियां करेंगे। का रहीम घट गयो जो भृगु ने मारी लात। आपको मालूम होगा कि एक बार भृगु ऋषि को यह हुआ कि इस धरती पर कौन सबसे महान ईश्वर है, तो परीक्षा लेने के लिए निकले तो अलग अलग देवी देवताओं से वो मिले, ईश्वर से मिले। और जब वो विष्णु भगवान के पास गए तो उस समय विष्णु भगवान अपनी सैया पर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर के उनके सीने पर लात मारी और जब सीने पर लात मारी तो विष्णु भगवान ने कहा कि ऋषिवर, मेरा ये जो सीना है ये वज्र की तरह कठोर है और आपके जो पांव हैं ये कमल के फूल की तरह कोमल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पांव को चोट लग गई हो। आप देखिए कि क्षमा बड़न को चाहिए, या विष्णु किस तरीके से क्षमा कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, छोटन को उत्पात। और भृगु जी ने तो लात मार दी। तो इसके बाद भृगु जी ने फैसला किया कि नहीं, जो सबसे बड़े जो देवता है जो हो सकते हैं वो विष्णु भगवान है। मुझे लगता है कि हमारी चेतना में समाया हुआ है। हम अपने को बार बार इस दोहे को याद दिला करके अंदर से पिघलाने की कोशिश करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं हमारे निकट आने का साहस जुटा सकें। हमारे पास अब एक छोटा सा जीवन है। जिस दिन यह जमा हुआ लोहा, कह लीजिए लावा, पिघल जाएगा, आप देखेंगे कि आप भी अपने अंदर से बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कर सके तो शायद जीवन की हम जो अंतिम सांस लेंगे वो बहुत सुकून के साथ ले सकेंगे। तो मेरी एक बहुत यही छोटी सी अपील है कि उनकी गलतियों को भुला दें, अपने ईगो को समाप्त कर दें और क्षमा भाव को अपने अंदर ला करके वो स्पेस क्रिएट करें कि हमारे अपने बच्चे हमारे निकट आकर हमारे गले लगकर हमसे खुलकर बात करने का साहस जुटा सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।